नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवली निगम। गृह मंत्रालय ने देश की नई राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी नीति और रणनीति प्रहार का अनावरण किया है। ये रणनीति आतंकवाद के बढ़ते खतरों से निपटने के लिए एक व्यापक व्यवस्था प्रस्तुत करती है। इसमें आतंकवाद को रोकने और उसका मुकाबला करने के लिए सक्रिय दृष्टिकोण अपनाया गया है। मंत्रालय ने कहा है कि हालांकि खतरों का स्वरूप लगातार बदल रहा है और नई चुनौतियां सामने आ रही हैं, फिर भी देश आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों का विरोध करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। मंत्रालय ने कहा कि भारत हमेशा आतंकवाद के पीड़ितों के साथ खड़ा रहा है और इस बात पर अडिग है कि दुनिया में हिंसा का कोई औचित्य नहीं हो सकता। यह सैद्धांतिक दृष्टिकोण आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की देश की नीति का आधार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल की जनता को पत्र लिखकर उनसे विकास के सफर में साथ देने की अपील की है। बंगाली और हिंदी में लिखे इस पत्र में प्रधानमंत्री ने वहां के लोगों से अपील की है कि राज्य के लिए भाजपा के विकास संबंधी दृष्टिकोण को प्रस्तुत किया जाए। उन्होंने कहा कि कुछ ही महीने बाद बचे हैं, फिर पश्चिम बंगाल का भविष्य तय हो जाएगा। श्री मोदी ने कहा कि आने वाली पीढ़ी का भविष्य किस राह पर चलेगा, ये राज्य की जनता के सुविचारित निर्णय पर निर्भर करता है। भारत में इसराइल के राजदूत रुएन अजार ने कहा है कि इसराइल इस सप्ताह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए उत्साहित है। उन्होंने कहा कि श्री मोदी की यात्रा के दौरान दोनों देश निर्णायक रूप से आगे बढ़ेंगे। इसराइल के राजदूत ने कहा कि दोनों देश मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा के दौरान भारत और इसराइल सुरक्षा समझौतों को अद्यतन करके रक्षा साझेदारी को और मजबूत करेंगे।
भारत और इसराइल कई वर्षों से मिलकर काम कर रहे हैं और हमें अपने मजबूत रिश्ते पर गर्व है, लेकिन दुनिया तेजी से बदल रही है और चुनौतियां भी बढ़ती जा रही है। इन चुनौतियों से निपटने के लिए हमें अपने रक्षा संबंधों को और मजबूत करना होगा तथा अपने सुरक्षा समझौतों को नया रूप देना होगा। इससे हमें अपनी परियोजनाओं में साथ काम करने और तकनीकी समाधान विकसित करने में मदद मिलेगी।
स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के जीवन और विरासत का स्मरणोत्सव राजाजी उत्सव नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में मनाया जा रहा है। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में चक्रवर्ती राजगोपालाचारी की प्रतिमा का अनावरण किया। अशोक मंडप के पास भव्य सीढ़ी पर राजगोपालाचारी की प्रतिमा की स्थापना एडविन लुटियंस की प्रतिमा के स्थान पर की गई है। राष्ट्रपति ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि चक्रवर्ती राजगोपालाचारी भारत के महान सपूत थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने देश के इतिहास पर अमिट छाप छोड़ी है।
जो लोग राष्ट्रपति भवन देखने आएंगे उन्हें राजा जी के योगदान से परिचित कराया जाएगा। भारतीयों चेतना और समस्त भारतवासियों विशेषकर कमजोर वर्गों के लोगों से जुड़ाव राजा जी के विचारों और कार्यों में दिखाई देता है।
सर्वोच्च न्यायालय ने आज राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से सभी कोयला आधारित उद्योगों को स्थानांतरित करने के प्रस्ताव पर केंद्रीय मंत्रालयों से जवाब मांगा है ताकि वायु गुणवत्ता में सुधार सुनिश्चित किया जा सके। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची तथा विपुल एम पंचोली की पीठ ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में लगातार बने वायु गुणवत्ता संकट से निपटने के लिए जवाब मांगे हैं। तेहरान में भारतीय दूतावास ने ईरान में रह रहे भारतीय नागरिकों से देश छोड़ने का आग्रह किया है। इसके लिए वाणिज्यिक उड़ानों सहित किसी भी परिवहन साधन का उपयोग करने की सलाह दी गई है। दूतावास ने इस वर्ष 14 जनवरी को अपनी सलाह को दोहराते हुए कहा है कि सभी भारतीय नागरिकों और भारतीय मूल के व्यक्तियों को उचित सावधानी बरतनी चाहिए, विरोध प्रदर्शनों और रैलियों वाले क्षेत्रों से बचना चाहिए। नीदरलैंड में सबसे युवा प्रधानमंत्री रॉब जेटन को राजा विलियम अलेक्जेंडर ने शपथ दिलाई। श्री जेटन तीन दलों के गठबंधन वाली सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं। उनके पास संसद के निचले सदन में 150 सीटों में से केवल 66 सीटें हैं, इसलिए श्री जेटन को कानून पारित करने के लिए विपक्षी दलों के साथ बातचीत करनी होगी। मुंबई में आईसीसी टी20 क्रिकेट विश्व कप के सुपर 8 में ग्रुप 1 के मैच में वेस्टइंडीज ने जिम्बाब्वे को 255 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक जिम्बाब्वे ने 10 ओवर में 4 विकेट पर 87 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।